दानियल की कहानी एक विदेशी भूमि में परमेश्वर के लोगों में से एक व्यक्ति के बारे में है और यह हमें दिखाती है कि एक धर्मनिरपेक्ष और भौतिकवादी संस्कृति में कैसे रहना है। दानियल प्रतिभाशाली छात्रों के एक छोटे समूह में से एक था जिन्हें यरूशलेम की पहली घेराबंदी के बाद बेबीलोन ले जाया गया। जब वो वहां पहुंचा तो वो किशोर अवस्था में होगा और वो जीवन भर बेबीलोन में ही रहा। 1727 विदेशी। अपनी बाइबल में दानियल 1 खोले। पादरी कहते हैं कि जब उनका परिवार पहली बार अमेरिका आया तो उनकी पत्नी कैरन एक ईसाई स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन बच्चे गलीचे पर बैठे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। उनकी पत्नी कैरिन ने बच्चों को बताया कि वह मतदान नहीं करेंगी और उन्होंने बच्चों से पूछा कि उनका मतदान नहीं करने का कारण क्या हो सकता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत बूढ़ी हैं? क्या इसलिए है कि आप हमें पढ़ाती है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको बाद में किसी बैठक में जाना है? आखिरकार एक प्रतिभाशाली बच्चे ने पूछा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इंग्लैंड से आई है श्रीमती स्मिथ? हां, कैरिन ने कहा। और क्या आप जानते हैं कि वे मुझे क्या बुलाते हैं? एक निवासी विदेशी। पादरी कहते हैं कि 2 सप्ताह बाद जब बच्चे सुबह की प्रार्थना के लिए गलीचे पर बैठे थे तो एक छोटी लड़की उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करने लगी। प्यारे परमेश्वर, कृपया लोगों को श्रीमती स्मिथ को निवासी विदेशी कहना बंद करने में मदद करें। ये सचमुच बहुत अच्छा नहीं है। बाइबल परमेश्वर के लोगों का वर्णन करने के लिए विदेशी या प्रवासी शब्द का उपयोग करती है। आप स्थायी रूप से इस दुनिया के निवासी नहीं हैं। आप दूसरे शहर के निवासी हैं, जिसका रचयिता और निर्माता परमेश्वर है। और आप इस दुनिया में अपने जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि यह वो नहीं है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। यदि आप ईसाई हैं, तो आप उस व्यक्ति की तरह है जिसके पास 2 पासपोर्ट है। उनमें से एक का समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब मसीह वापस आएंगे तो जिन राष्ट्रों से हम जुड़े हुए हैं वे इतिहास में खो जाएंगे। परंतु स्वर्ग के निवासी के रूप में आपके पासपोर्ट का समय कभी समाप्त नहीं होगा, यह सदैव रहेगा। ईसाई जीवन की कला इस दुनिया में बिना उपभोग हुए जीना है। हमें अपने छोटे से जीवन का उपयोग आने वाले अनंत जीवन की तैयारी के लिए करना है। कल्पना कीजिए कि दानियल यरूशलेम में अपने स्कूल की मेज पर बैठा है। दरवाजे पर दस्तक होती है। एक क्षण बाद नबूकदनेज़र की सेना के 3 सैनिक अंदर घुस आते हैं और दानियल को 700 मील दूर बेबीलोन ले जाया जाता है। उसके माता पिता बेहद व्याकुल है और इसे रोकने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते। परंतु जब दानियल बेबीलोन पहुंचता है तो वह यह पाता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार और कैद होने के बजाय उसके साथ राजघराने जैसा व्यवहार किया जाता है और उसे एक शीर्ष स्तर के स्कूल में दाखिल दिला जाता है। उसे एक प्रमुख शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना जाता है जो उसे राजा की सेवा में तेजी से शामिल करेगा। यदि वो अपने पत्ते सही से खेलेगा तो उसे बेबीलोन में एक शीर्ष नौकरी मिल जाएगी। धर्मप्रायण लोगों के प्रभाव में बड़े होने के बाद दानियल को एक नए वातावरण में रखा गया जहां वह पूरी तरह से गुमनाम था। जो लोग यात्रा करते हैं वे इस दबाव के बारे में सब जानते हैं। जब आप हवाई जहाज पर चढ़ते हैं या किसी होटल में दाखिल होते हैं तो कोई नहीं जानता कि आप कौन हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं और इसके साथ ही दबाव भी आता है। दानियल को अशपनज नामक एक शिक्षक की देखरेख में रखा गया था जिसे उसे बेबीलोनियों का साहित्य और भाषा सीखने के लिए नियुक्त किया गया था। यदि दानियल यरूशलेम में होता तो वो हिब्रू का अध्ययन करता और बाइबल सीखता, परंतु बेबीलोन में बाइबल पाठ्यक्रम में नहीं थी। इसके बजाय दानियल को विस्तार से वो सीखने के लिए अनावृत किया गया था जिनमें से अधिकांश चीजें सीधे सीधे उससे बिल्कुल विपरीत थी जिसे उसने एक बालक के रूप में बाइबल से सीखा था। दानियल के दिमाग को बेबीलोनाई शिक्षा भरकर अशपनज परमेश्वर में दानियल के विशेष विश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था ताकि विद्यालय के 3 साल के अंत में वो पूरी तरह से बेबीलोनाई विश्व दृष्टि के साथ उभर सके। बेशक वह तब भी यहूदी रहेगा परंतु वो बेबीलोनाई की तरह सोचेगा और कार्य करेगा। पाठ्यक्रम की चुनौतियों के अलावा दानियल को अपने शिक्षक और अन्य छात्रों के दबाव का सामना करना पड़ेगा। तुम सच में कैसे विश्वास कर सकते हो कि तुम्हारा परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है? तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसके पास सत्य है? आज धर्मनिरपेक्ष विश्वविद्यालयों में ईसाई युवाओं को इसी दबाव का सामना करना पड़ता है। माता पिता कभी कभी इस बात से व्यतीत होते हैं कि उनके बच्चों को विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है। छात्र अक्सर ऐसे साहित्य का अध्ययन कर रहे होते हैं जो सीधे तौर पर सच्चाई का खंडन करता है, परंतु यह कोई नई बात नहीं है। यह बिल्कुल वही स्थिति है जिसका सामना दानियल ने किया था और परमेश्वर ने हमें इस दबाव के खिलाफ खड़े होने का आदर्श दिया है। उसे अभिभूत करने की बात तो दूर, दानियल की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा ने वास्तव में उसका निर्माण किया। परमेश्वर की भलाई में यह वो निहाई बन गई जिस पर उसका विश्वास परिपक्वता में बदल गया। अपने पूरे इतिहास में परमेश्वर के लोग 2 बिल्कुल अलग अलग प्रकार के उत्पीड़न के अधीन रहे। फिरौन की योजना परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करने की थी। वह क्रूर था और परमेश्वर के लोगों से कड़ी मेहनत करवाता था। शैतान आज भी कई स्थानों पर उसी रणनीति का उपयोग करता है जहां ईसाइयों को उनके विश्वास के लिए सताया जाता है, परंतु नबूकदनेज़र की योजना अधिक सूक्ष्म थी। उसकी रणनीति परमेश्वर के लोगों को बेबीलोन की संस्कृति में समाहित करने की थी, उनके लिए अफसरों के द्वार खोलने और उन्हें तेजी से सफलता की राह पर ले जाने की थी। हमारी आत्माओं का दुश्मन अभी भी नबूकदनेज़र की रणनीति का उपयोग कर रहे हैं और वे बहुत प्रभावी साबित हो रहे हैं। रणनीति सरल है। सबसे पहले परमेश्वर के लोगों को इस दुनिया के आकर्षण और वैभव से मदहोश करो। दूसरा, उनकी विशेष प्रथाओं और मूल्यों को तब तक नष्ट करो जब तक कि वे संस्कृति में इतने समाहित ना हो जाए कि परमेश्वर की महिमा के लिए जीने की उनकी विशेष पुकार खत्म हो जाए। दानियल को राजा द्वारा खाए जाने वाले भोजन का दैनिक हिस्सा दिया जाता था, परंतु उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा के भोजन से स्वयं को अपवित्र नहीं करेगा। कुछ लोगों का सुझाव है कि इसका संबंध यहूदी खाद्य कानून से है, परंतु पादरी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि दानियल ने समझ लिया था कि नबूकदनेज़र उसे बेबीलोन में जीवन के अवसरों का लालच देना चाहता था और उसने ठान लिया था कि ऐसा कभी नहीं होगा। वह बेबीलोन में रहेगा, सेवा करेगा और समृद्ध होगा, परंतु वह कभी भी बेबीलोन को अपने हृदय पर कब्जा नहीं करने देगा। दानियल को इसे अपने मन में स्थिर रखने का एक तरीका चाहिए था, इसलिए उसने अपने लिए एक अनुशासन स्थापित करने का निर्णय लिया। उसने शहर के शीर्ष भोजनालय में प्रतिदिन जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसके बजाय दोपहर के भोजन में भूरे रंग के थैले वाली सब्जियां खाई। उसने ऐसा किसी बाहरी कानून के कारण नहीं किया, बल्कि आंतरिक इच्छा के कारण किया। यह एक स्वैच्छिक अनुशासन था जिसे उसने अपनी विशेष बुलाहट की याद दिलाने के लिए बनाया था। क्या आप इस बारे में यथार्थवादी है कि दुनिया आप पर कितना दबाव डाल रही है? हर दिन आप जीवन के उस दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं जो आत्म केंद्रित है और जिसमें परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। आपको प्रतिरोध के लिए एक रणनीति की आवश्यकता है। दानियल की तरह हमें अधार्मिकता को ना कहने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है और इसकी शुरुआत छोटी चीज़ों से होती है। कुछ ईसाई ऐसे कार्य करते हैं मानो जीवन के व्यवहारिक नियमों में केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना हो। हम पूछते हैं क्या ये सही है या गलत, और जब तक ये गैर कानूनी या अनैतिक ना हो हम उत्सुकता से आनंद लेने की अपनी स्वतंत्रता की पुष्टि करते हैं। परंतु हमारी स्वतंत्रता के क्षेत्र में आने वाले चीजों के बारे में पूछने के लिए एक और सवाल है, क्या यह समझदारी है? आपको कौन सा मनोरंजन चुनना चाहिए? आपको किन दावतों में जाना चाहिए? आपको किस प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए? आपको अपना पैसा किस पर खर्च करना चाहिए? दानियल का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि जब भी हम ये निर्णय लें तो हमें दुनिया के मूल्यों और जीवन शैली में शामिल होने की दीर्घकालिक क्षमता पर विचार करने की आवश्यकता है। दानियल को विद्यालय में जो सिखाया गया था वो उसे बदल नहीं सकता था, परंतु वो अपने जीवन में एक ऐसी जगह बना सकता था जो उसे प्रतिदिन याद दिलाता रहे कि वो परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर ने दानियल और उसके दोस्तों को उनकी पढ़ाई में बड़ी सफलता प्रदान करी। परमेश्वर ने उन्हें सब छात्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। वफादारी और सफलता को एक दूसरे का विकल्प होना जरूरी नहीं है, वे स्वाभाविक भागीदारी है। दानियल छोटी चीजों में वफादार साबित हुआ और परमेश्वर ने बड़ी चीजों में उस पर भरोसा किया। उसे अपने समय के सबसे शक्तिशाली सरकार में एक प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया। यह कभी ना सोचे कि मसीह के प्रति वफादारी का अर्थ छोटी छोटी चीजों के लिए समझौता करना है। दानियल ने साबित किया कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। वह परमेश्वर के प्रति वफादार था और परमेश्वर ने उसके लिए अवसर का द्वार खोल दिया। वह बेबीलोन के राजा का द्वितीय प्रमुख बन गया और उसे इतना प्रभाव दिया गया जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दानियल की तरह जब यीशु की परीक्षा हुई तो उन्होंने भी संसार के मोहिक प्रलोभनों का सामना किया और क्रूस पर उन्होंने संसार के खुले विद्रोह का सामना किया। उन्होंने दोनों पर विजय प्राप्त की और अपने शिष्यों से यह कहने में सक्षम हुए, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। दानियल ने स्वैच्छिक संयम का पालन करके एक समृद्ध और अधर्मी संस्कृति में एक ईश्वरीय और सफल जीवन व्यतीत किया। परमेश्वर ने हमें तपस्या के जीवन के लिए नहीं बुलाया है, परंतु अनुशासनहीन लालच भक्ति को नष्ट कर देता है। धन, सत्ता और सुख का आकर्षण प्रबल होता है और यह आसानी से आपके हृदय पर कब्जा कर सकता है। आपको परमेश्वर के प्रति ऐसे प्रेम की आवश्यकता है जो अधिक मजबूत हो। जैसे जैसे मसीह के लिए प्रेम आपके हृदय में भरता है, यह तेजी से उन कम प्रेमों को बाहर निकालता जाएगा जो अन्यथा आपको बंदी बना लेती है।